श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो, तू है मसीह प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु तेरी सच्चाई मुझ में हो, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु, आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु, तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, ही तेज मुझ में हो प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे कि किस प्रकार आमोस इसराइलियों को चेतावनी देता है और परमेश्वर की ओर से मौका भी देता है कि वे अपने मनों को फिराएं और उस भयानक न्याय से दंड से बचने के लिए मन को फिराएं। तो मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, हम सबकी आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को और हृदय और विचारों को आप खोलें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ, हमारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन से दुखी हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं, अपनी नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। आप उन सब पर भी कृपा दृष्टि करें, उनके जीवन में भी आप कार्य करें, उनसे बोले और बातचीत करें ताकि वे जानने पाए कि आपके पास समाधान है और आप चाहते हैं कि वे आपकी निकटता में आए। परमेश्वर पिता, आज अपने दास के द्वारा से हम सब से उस वचन से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आमोस जो इस पुस्तक का भविष्यद्वक्ता है कहता है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन के अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा, जी हाँ ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी न चमके, यह वैसा होगा जैसे कोई सिंह से डर कर भागे तो सामने भालू खड़ा हो और वह भालू से बचकर भागे और घर पहुंचे तो घर की दीवार पर हाथ रखते ही सांप उसे डस ले। मेरे प्रियो, आराधनाओं में गाना बजाना और बलि चढ़ाना बंद करें, न्याय करें, संतोषदायक न्याय, एक दूसरे से प्रेम करें, अपने मनों को फिराएं, क्योंकि परमेश्वर यही देखना चाहता है। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 21 से 23 पद को पढ़ेंगे। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 21 से 23 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं, चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में ऊपरी दिखावा था जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं। उन्हें समझना आवश्यक था कि उनका विश्वास सच्चा हो। कुछ लोगों का कहना है, यदि आप विश्वास करते हैं तो आप अंधे हैं, आपका विश्वास अंधा है, परमेश्वर को अंधा विश्वास पसंद नहीं है। जी हां, विश्वास का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना आवश्यक है। याकूब के पत्र 2 अध्याय उसके 20 पद में वह कहता है, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और पौलुस कहता है कि हमारा उद्धार इसलिए हुआ है कि हम भले काम करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसराइली पाप का जीवन जी रहे थे। वे मूर्ति पूजा के साथ मूसा की व्यवस्था की अनिवार्यताएं पूरी करते थे। परमेश्वर कहता है, मुझे इससे घृणा आती है, मुझे इससे घृणा है। आपकी आराधनालयों में आपका मन कहीं और है तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है। यदि आप हमारी आराधना में उपस्थित हो तो क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर वहां है? यदि वह हमारी आराधना में उपस्थित हो तो आप क्या सोचते हैं कि वह क्या कहेगा? मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से इसराइलियों के लिए कहा गया है कि वह उनके बलिदानों से, उनकी आराधना और सारंगी से वह प्रसन्न नहीं होता है, वह हमारे हृदय को, हमारे जीवन को देखना चाहता है कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं। आमोस 5 उसके 24 से 26 पद में आगे लिखा हुआ है, परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इसराइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। ध्यान दीजिए, जंगल में इसराइल परमेश्वर यहोवा ही को भेंट चढ़ाता था, परंतु अन्य जातियों के संपर्क में आने के बाद वे उनकी उपासना को अपनाने लगे। मोलेक की उपासना में वे बच्चों को मूर्ति के हाथों में जीवित जला देते थे। बच्चों का अर्धनाद भयानक था। परमेश्वर कहता है, रविवार को तो तुम आराधना करते हो, परंतु पूरे सप्ताह तुम मोलेक अर्थात लालच, पैसे की उपासना करते हो। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम ने एक बड़े पादरी वोल्से को न्यायालय से बाहर कर दिया था, और यदि वे मरते नहीं तो उन्हें अवश्य मृत्यु दंड देता। परंतु मरते समय उन्होंने कहा, काश मैं राज्य की नाई परमेश्वर की सेवा करता। मरण शया पर बहुत से विश्वासियों को कहना पड़ेगा, मैं पैसे की अपेक्षा परमेश्वर की सेवा करता तो अच्छा होता, काश मैं नहीं भटकता। मेरे प्रियो, चाहे आपके अंतिम संस्कार पर अत्यधिक मधुर संगीत हो, पादरी मीठे मीठे वचन आपके लिए बोलता हो, परंतु आपको प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के समक्ष उपस्थित होना ही पड़ेगा। मेरे मित्रों, यही बात मुझे परेशान करती है। इस कारण मैं चाहता हूं कि यही अपने आप को जांच लू, यही अपने आप को परख लूं और अपने मनों को फिराकर उस परमेश्वर के निकटता में आ जाऊं, ताकि मैं उसके समक्ष सही रीति से खड़ा होने पाऊं। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 27 पद, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इसराइल दंड अवश्य पाएगा, वे बंधुआई में जाएंगे, दमिश्क के पार अर्थात निनवे में। अश्शूर उन्हें बंधुआई में ले जाएंगे और उन्हें अपना गुलाम बना करके रखेंगे। मेरे प्रियो, उनके लिए भी कोई अछूता नहीं रहा, हर एक व्यक्ति उसके बंधुआई में ले जाए जाएंगे। यह क्या ही कठोर बात है कि हम भी अपने पाप में बंधे हुए उस दासत्व में पड़े हैं, और हम आज अपने पाप का गुलाम बने हुए हैं। परमेश्वर को छोड़ करके, उस स्वतंत्रता को छोड़ करके हम दासत्व में जीवन जी रहे हैं। हमारे बहुत सारे माता पिता, भाई बहन और जवान लोग संसार के उन बुराइयों में बंधे हुए हैं, उसके गुलाम बने हुए हैं, शराब के आदि हैं, तंबाकू के आदि हैं और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों के आदि हैं, और वे उसके गुलाम बन चुके हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप उससे बाहर आए? क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक स्वस्थ जीवन दिया है, उसने अपने हाथों से आपको रचा है, ताकि आप उसके लिए जिए, पवित्रता का जीवन जिए और उसको महिमा दें। मेरे प्रियो, यहाँ पर अध्याय 5 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 6 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इस अध्याय का विषय है इसराइल को अपराधों से मन फिराने की चेतावनी। इसराइल को अपराधों से मन फिराने की चेतावनी। आमोस कहता है हाय, अर्थात हाय के साथ इस अध्याय का आरंभ करता है। यद्यपि वह हाय देने वाला भविष्यद्वक्ता नहीं था, परंतु वह हाय का विपुल उपयोग करता है। इसका अर्थ है ठहरो, देखो, सुनो, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बात है जो निम्नलिखित चेतावनियों पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो आइए हम पढ़ें आमोस 6 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इसराइल का घराना आता है। सियोन दक्षिण राज्य में था। इसका अर्थ है कि वह दोनों राज्यों को चेतावनी दे रहा है। सियोन धार्मिक केंद्र था, वहां परमेश्वर का भवन था और एक महान नगर था। कहता है हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। आज हम कहते हैं शुभ दिवस, या कहें आरंभ से या आराम से। इसराइल ऐसा ही करता था, वे आराम ही से थे, वे समृद्धि में बहुत आनंदित थे। तब वह आगे कहता है जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं। सामरिया उत्तरी राज्य की राजधानी थी। आहाब और इजेबेल वहीं रहते थे। उनके महल हाथी दांत के बने हुए थे। वहां के पहाड़ उनके लिए दृढ़ गढ़ थे। अश्शूरों को 3 वर्ष प्रयास करके उन्हें जीतना पड़ा था। अश्शूरों के विनाश के बाद हेरोदेश ने अपने समय में उसका पुनः निर्माण किया। निर्माण करना उसकी रुचि थी। उसने केसरिया को बनाया। सामरिया एक मनोरम स्थान था। उसके वैभव और प्राकृतिक सुरक्षा के कारण इसराइल उसे सर्व सुरक्षित स्थान मानता था। तब हम देखते हैं वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इसराइल का घराना आता है। इसराइल के राजकुमार जो पद प्रतिष्ठा रखते थे, इन अभक्तों के पास प्रजा न्याय और सहायता खोजने को आती थी, परंतु वे केवल अपने ही स्वार्थ और भोग विलास में मग्न थे। मेरे मित्रों, जाति में प्रसिद्ध का अर्थ यही हो सकता है कि वह इसराइल ही के विषय कह रहा है, क्योंकि उस समय इसराइल को सब जातियों में श्रेष्ठ माना जाता था और उन्हें होना चाहिए था कि दूसरों के लिए वे एक नमूना का जीवन जीते, परंतु वे ऐसा नहीं जी रहे थे। आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय के 2 पद में लिखा है कलने नगर को जाकर देखो और वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर पलिस्तियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? यहां पर वह कहता है कलने नगर को जाकर देखो। कलने नगर जाब और हाइग्रिसन नदी के संगम पर बसा था। वहीं नीनवे नगर था। यह एक मुख्य केंद्र था। और तब कहता है कि वहां से हमात नामक बड़े नगर को जाओ। हमात सीरिया का एक महान नगर था। वह दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। तब हम देखते हैं फिर पलिस्तियों के गत नगर को जाओ। गत नगर पलिस्तिया के दक्षिण में एक मुख्य पलिस्ती नगर था। तब वह कहता है क्या उनका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? तुम अपने आप को उनसे बड़ा कैसे मान सकते हो? तुम्हारे पाप उनसे कम नहीं, परंतु तुम्हारा उत्तरदायित्व उनसे भी बढ़कर है। वे अंधकार में वास करते हैं, परंतु तुम्हें तो परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त है। मित्रों यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आगाह करता है कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, उस प्रकाशन को प्राप्त करने के बाद भी, हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसा एक पापी अपने जीवन को जीता है। संसार में हम लिप्त हैं, और आमोस इसराइलियों से भी यही कहता है कि वे प्रकाशन को पाकर, परमेश्वर को जानकर उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं जैसा संसार के लोग जीते हैं। आज मुझे और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अब आमोस इसराइल के तीन पापों का उल्लेख करेगा जिनके कारण उनका पतन हुआ, बेबीलोन, मिस्र, यूनान और रोम के पतन का कारण भी यही था। कहा जाता था कि बर्तानिया में सूर्यास्त नहीं होता, परंतु आज वह स्वयं अस्त हो रहा है। इसराइल के ये तीन मुख्य पाप हैं और इन पापों के कारण परमेश्वर किसी भी देश को दंड देगा, चाहे वह देश कोई भी क्यों ना हो। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस 6 अध्याय उसके 3 पद। यहाँ पर लिखा है, तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। ध्यान दीजिए, इस्राएली कहते थे हम जानते हैं कि परमेश्वर दंड देगा, परंतु अभी नहीं, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यशाया ने जब हिजकिया को आने वाले दंड की चेतावनी दी थी तब उसका भी यही उत्तर था। उसने पूछा, क्या यह मेरे जीवन काल में होगा? हिजकिया एक अच्छा राजा था, परंतु उसकी मानसिकता भी यही थी कि यदि उसके समय ऐसा नहीं होगा तो चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे अपने नाती पोतों की चिंता है, बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, किसी देश के पतन का कारण ये कौन से पाप हैं? पद 4 में पहला पाप हम देखते हैं। आमोस 6 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। ध्यान दीजिए, अवैध यौनाचार और पेटूपन ये शरीर की अभिलाषाएं हैं। लिखा है, तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते हो। आहाब और इजेबेल हाथी दांत के महल में रहते थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में अनेक मूल्यवान हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं, और महल के अवशेषों से ज्ञात होता है कि वह उस समय का वैभव था। उनके पलंग बड़े बड़े थे, वे सब विलासिता का जीवन जी रहे थे और वे निश्चिंत थे। तब हम देखते हैं कि वे अपने अपने बिछौने पर पांव फैलाए सोते हो। इसका संदर्भ उनके व्यभिचारी जीवन से है। महिला उत्थान अभियान में किसी ने कहा कि स्त्री का स्थान रसोई और शयन कक्ष है। यह एक दुखदायी बात है। ऐसे पाप में लिप्त कोई भी देश बच नहीं सकता और ना ही बच पाया है। रोम कैसे बिखर गया? इतिहासकार गिब्बन का कहना है कि रोम के पतन का कारण परिवार का पतन था, अनैतिकता के कारण उस देश का पतन हुआ। मेरे मित्रों, अब हम पद 5 में दूसरे पाप को देखते हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 5 पद। 6 उसके 5 पद में लिखा है, तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो। ध्यान दीजिए, संगीत भी देश के विनाश का कारण है। मुझे आप पिछड़ा हुआ समझेंगे, परंतु यह सच है। कोई कहेगा, आप संगीत के विषय में क्या जानते हैं? मैं संगीत तो नहीं जानता, परंतु अपनी पसंद और नापसंद को अवश्य जानता हूं। मैं बहुत सा संगीत पसंद नहीं करता और सुनता भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, परंतु अब उनका संगीत दाऊद के संगीत के समान नहीं था। वह तो परमेश्वर के महिमान्वयन के लिए गाता और बजाता था। आमोस के युग में भी अनेक प्रतिभाशाली लोग थे, परंतु वे परमेश्वर की स्तुति और महिमान्वयन में संगीत का उपयोग नहीं कर रहे थे, जैसा कि आज भी बहुतों को परमेश्वर ने वरदान स्वरूप गीत और संगीत दिए हैं, परंतु वे परमेश्वर की नहीं परंतु संसार के लिए उसका उपयोग करते हैं। मेरे विचार में उनका संगीत मनुष्य को परमेश्वर और आराधना से दूर कर रहा था। जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वरदानों को उसके महिमा के लिए उपयोग में लें, जैसा कि दाऊद ने किया, परंतु आज संसार उन वरदानों को परमेश्वर के लिए नहीं परंतु संसार के लिए अपने सुख विलास के लिए उपयोग में ले रहा है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि आपका जीवन किस प्रकार का है और किस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है कि कुछ ऐसे पाप हैं जिसके द्वारा से न केवल देश नाश होता है परंतु हम व्यक्तिगत रीति से नाश होते हैं। और यहां पर हमने दो पापों को देखा है और इसी के साथ यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम इसके तीसरे पाप को देखेंगे जिसके कारण से देश नाश होता है, जिसके कारण से मैं और आप नाश हो सकते हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे कि आप परमेश्वर की निकटता में बने रहें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो, पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो, आशीष शीश मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे।